चर्चा करें। अभी हमें कौन से जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं उसकी जो हमने चर्चा की तो उसमें हमने देखा था कि चारों ही गति वाले, यानी ये सभी जो कंडीशन पढ़ी अभी हमने, वो सभी जिस जीव में होगी वो जीव सम्यक तो प्राप्त कर सके प्रथमोपशम समय। तो चारों ही गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि जीव संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक। अभी किसी ने पूछा कि चारों गति में जो तिरेंच गति है उसमें तो एक इंद्रिय से तो संगी तक बहुत सारी वैरायटी है, परंतु हमें कंडीशन क्या उसमें डाली, संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। तो तिरेंचों में भी सम्यक तो प्राप्त होगा परंतु संगी पंचेंद्रियों को ही होगा, असंख्यों को इन्हें एक इंद्रियों से लेकर चतुर इंद्रिय असंख्य पंचेंद्रियन तक के जीवों को वैसी योग्यता ही नहीं पाई जाए। तो उसके पश्चात हमने देखा कि चारों गति वाले भव्य मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को होगा, अपर्याप्तों को नहीं होगा। फिर उसके पश्चात मनुष्य और तिरेंच जो है उनमें गर्भजों में होगा और मंद कषाय रूप वाले को होगा, तीव्र कषाय रूप वाले को नहीं होगा। ये तो विशुद्धि लब्धि बताता है। फिर उसके बाद जागृत होना आवश्यक है, जागृत होते हुए भी साकार ज्ञान उपयोग वाले को होगा, दर्शन उपयोग वाले के स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग पॉइंट में दर्शन उपयोग बाद में हो सकता है। और ऐसे जीव को पांच लब्धि पूर्वक करण लब्धि के जो अनिवृत्तिकरण है उसके पश्चात वाले समय में प्रथमोक्षम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। यहाँ तक तो हमने देखा था। पेज 62 पर आ गए हम हिंदी में, गुजराती में क्या है नंबर 59। हाँ, वो नीचे क्या पैराग्राफ है देखो, देव नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, तिर्यंचों में एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं। ये हमें सबको मालूम है, देव सभी संगी पंचेंद्रिय है, नारकी संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है और तिर्यंच में एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के सभी अलग अलग जीव पाए जाते हैं। तो ये वनस्पति का एक जीव कौन से गति का जीव है? गति गति तिर्यंच गति, और वो निगोद तिर्यंच गति। ये तो अभी हमें पता है तो छोटे बच्चों को क्या लगता है वो खाएं, घोड़े कुत्ता बिल्ली ये तो तिर्यंच है, परंतु ये पेड़ कौन से गति का है? तो तिर्यंच वो तो ऐसा उलझन में पड़ता है, ये कैसा तिर्यंच होगा, क्योंकि तिर्यंच यानी पशु पक्षी इतना ही उसने मान रखा है ना। फिर जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, अग्नि क्या है? तिर्यंच गति का जीव है, ख्याल है? हाँ। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक तो प्राप्ति की पात्रता ही नहीं होती, उस पर्याय में उन्हें सम्यक तो प्राप्त नहीं होता। और एक बात बताइए, और सम्यक दृष्टि जीव मरकर इन पर्यायों में जन्म भी नहीं लेता। उसका सम्यक तो बना रहे तो वो इन असंगी तक के पर्यायों में कभी नहीं जाएगा। मिथ्यात्व में कोई जीव आवे और ऐसे परिणाम खोटे हो जाए तो निगोद में भी चला जावे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। परंतु सम्यक्त्व के साथ मरकर वो तो अन्य गति में जाता है, तो इन पर्यायों में नहीं जाएगा, यानी एकेंद्रियों से असंधि पंचेंद्रिय तक के पर्यायों में वो जाएगा ही नहीं। संगी जीवों में ही इसकी पात्रता होती है। इसका कारण यह है कि मन सही जीवों के ज्ञान का इतना उघाड़ पाया जाता है कि उन्हीं में उपदेश सुनना, धारणा में लेना, उस पर विचार करना, तत्व निर्णय करना आदि बातें संभव है। यानी मन सहित वाले को ज्ञान का इतना उघाड़ है, वो विचार तो स्वयं ज्ञान से करता है, परंतु वहाँ निमित्त रूप से मन है तो उसमें वो उपदेश सुनता है तो याद रखता है, फिर उस पर विचार करता है, ये बातें जो है ना सब ये मन द्वारा ही संभव है। मन रहित ऐसे असंगी जीवों में यह पात्रता नहीं है। देव और नारकी जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक तो प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में पर्याप्त गर्भज होना आवश्यक है। अपर्याप्त जीवों को और समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं होता। मनुष्य में गर्भ सहित 8 वर्ष पूर्ण होने पर, अभी ये हमने देखा है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, इस पर हमने बातचीत की, प्रथमोपशम सम्यक तो की प्राप्ति की पात्रता होती है उसके पहले नहीं। गर्भज तिर्यंचों में जन्म के पश्चात यथा योग्य काल में यह पात्रता होती है। उस काल को दिवस पृथक्व कहा है, अर्थात 3 से 9 दिन। तुम पूछोगे कि हमने तो पूज्य कांजी स्वामी जी के प्रवचनों में अनेक बार पढ़ा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात सम्मूर्छन महामत्स्य सम्यक दृष्टि है, 5वें गुणस्थान वर्ती है, और तुम तो गर्भज तिर्यंचों की बात कर रही हो। गर्भज और सम्मूर्छन क्या होते हैं? हमें भी प्रश्न है ना, ये गर्भज क्या है और सम्मूर्छन क्या है? हम तो प्रथमोपशम सम्यक्त की बात कर रहे हैं। सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो सादी मिथ्या दृष्टि है वे क्षोपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं। हमने कंडीशंस किसकी बताई थी? प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए। गर्भज का अर्थ माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाले, यानी माता के स्त्रीबीज और पिता के वीर्य के निमित्त से उनके शरीर की उत्पत्ति होती है, तो उसको कहते हैं गर्भज। सम्मूर्छन जीव आसमंता यानी वातावरण में से कुद्गलों का अर्थात आहार वर्गणा का ग्रहण कर उन्हें शरीर रूप परिणमाते। संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी, क्योंकि हमने देखा था वो लब्धि अपर्याप्त वाले जो जीव है, सम्मूर्छन जीव है, तो वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हमने देखे थे अलग। मनुष्य भी सम्मूर्छन होते, परंतु मनुष्य सम्मूर्छन भी अपर्याप्त होते, पर्याप्त नहीं होते, और वो गर्भज भी नहीं होते, शरीर के आधार से उत्पन्न होने वाले होते। तो मनुष्य में भी सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं। ऊपर का रह गया, एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सारे ही तिर्यंच नियम से सम्मूर्छन तिर्यंच होते हैं, उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त जीव होते हैं, यानी उसमें जो शुद्र भव है श्वास के 18वें भाग में मरने वाले उसको हम कहेंगे अपर्याप्त, और जिनकी आयु अधिक है पर्याप्ति पूरी हो जाएगी बाद में मरेंगे तो उसको हम कहते हैं पर्याप्त। मनुष्य में भी सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं जो लब्धि अपर्याप्त होते हैं, यानी वो छोटी आयु वाले श्वास के 18वें भाग वाले। आर्यखंड की महिलाओं के काक आदि विषय अंगों में इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। अब बात निकली है तो देव और नारकी के जन्म संबंधी बात भी करेंगे। उनमें उपपाद जन्म होता है, अभी हमने देखा था ना, जन्म के हैं तीन भेद, गर्भ जन्म, ये सम्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्म। स्वर्ग और नरकों में माता पिता द्वारा पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती, वहां कोई माता पिता नहीं और ना कोई बाल बच्चे है ना स्वर्गों में। उनके उपपाद के जन्म स्थान है, यानी ऐसी कोई शैया होती है वहां, और वहां एक अंतर्मुहूर्त में युवान ही जीव पैदा होता है, यानी देव हमेशा युवा ही रहे, ना वहां बालक है ना कोई वृद्ध है। वहां एक अंतर्मुहूर्त में जीव पूर्ण वृद्धि सहित युवा ही जन्मता है, स्वर्गों में बाल बच्चे नहीं होते, वहां के जीवों के बाल भी नहीं और बच्चे भी नहीं। दाढ़ी मूंछी वगैरह कुछ ऐसे बाल भी कुछ नहीं होते। हाँ, तुम कहोगी हाश कितना अच्छा, हम तो दिन भर बच्चों की देखभाल करने में, उन्हें खिलाने पिलाने में, उनका अभ्यास होमवर्क लेने में पागल की भांति दौड़ धूप करते रहते हैं, इसीलिए वहां स्वर्ग सुख कहते होंगे। हमारा पूरा दिन तो बच्चों की संभालने में और बालों को संवारने में ही चला जाता है। चलो इतना तो एहसास हो रहा है, अभी कुछ कम नहीं है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसी में जिंदगी चली जाए और हमारी उम्र में जब बच्चे और बाल दोनों ही छोड़कर चले जाते हैं तब उनकी याद में पूरा दिन बिताना पड़े। क्या होता है, हम बड़े होते बूढ़े होते हैं तो बच्चे पढ़कर सियाने हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं, तो रोना आता है हमको कि उनकी याद में हम रोते बैठते हैं। मन कोई याद दूसरा, एक बात तो बच्चे छोड़कर चले गए और फिर घर में रहे हम दोनों मियाँ बीवी, तो इसमें से कोई तो पहले जाने वाला है, तो कोई पहले जाने वाला है और हम अकेला रह गए इसलिए रोते बैठेंगे। एक तो बच्चे छोड़ गए इसलिए रोएंगे, और एक हम अकेले पड़ेंगे भविष्य में इसलिए रोएंगे, यानी हमारा सारा काल किस में जाता है, वो रोने में चला जाता है। तो ऐसा नहीं सोचते कि चलो अच्छा है, अब बच्चे छोटे थे उनकी कोई जिम्मेदारी थी उससे तो हम निपटे, अभी जो जाएगा आगे पहले बाद में जाएगा वो जाएगा, अभी तो अच्छे हैं ना हम खासे, तो अभी का समय तो हमारे हाथ में है तो उसका हम ये फायदा कर लेना चाहिए, परंतु ऐसा जीव का नहीं ना, वो जो बीत चुका है और जो होने वाला है उसी के बारे में जीव सोचता है। किसी भी संगी पंचेंद्रिय को सम्यक तो हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है, क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम सुनाना भी चाहते हैं और कोई तीव्र कषाय जीव होता है तो सुनने की बात तो दूर ही, वो हमें ही उपद्रव करे या कुछ बाधा डाले विघ्न डाले, ऐसे होते हैं ना जीव कि हम तो उनकी भलाई के लिए कहना चाहते हैं फिर भी वो ऐसे कोई निकलते हैं कि सुनाने वालों को ही बाधा उत्पन्न करे। हाँ उदाहरण, अच्छा दिन भर सुन सुन कर बहुत परेशान हो गए इसलिए उदाहरण सुनना चाहते। एक बंदर था और चिड़िया पेड़ पर रहते थे, तो चिड़िया हमें मालूम है घोंसला बनाती है, तो चिड़िया तो घोंसला बनाती और बंदर यहाँ वहाँ कूदने में पूरा टाइम गवाता है, तो वो हाथ पैर वाला मनुष्य जैसा सब बुद्धि वाला है चिड़िया तो चोंच से साया बनाती है, हाथ पैर से तो कुछ कर नहीं सकती है, वो तो है दो ही पैर है, हाथ कुछ है ही नहीं उसके, तो फिर भी चोंच से एक एक तिनका लाकर वो घोंसला बनाती है। तो उसको वो बंदर की बहुत दया आती है, तो कहते हे बंदर मैं देख इतनी छोटी हूँ, मुझे तेरे जैसे हाथ भी नहीं है, फिर भी मैं चोंच से एक एक तिनका इकट्ठा करके ये मैंने घोंसला बना दिया है, तू भी अपने लिए एक घर बांध, ये अच्छा रहता है, अपने बच्चों के रखने के लिए भी अच्छा होता है। और फिर अभी बरसात के दिन आने वाले हैं, और अब बरसात के दिनों में भी तो ऐसे भीगता रहेगा, तो तू क्या कर कि तू भी एक अपने लिए घर बना दे, घोंसला बना दे। तो बंदर ऐसे बात टाल कर खेलने में कूदने में चला जाता है। फिर दोबारा वो कहती है अरे तू अपना घर तो बसा ले, ऐ चौपट तुझे दूसरा कोई धंधा नहीं है, दूसरों को सियानपन सिखाती है, तो ऐसे चिड़कर वो चला जाता है। फिर बार 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 ये टोके और वो ऐसे टाल दे। तो एक बार इसको इतना गुस्सा आया, ये क्या मुझे सिखाती है, घोंसला बनाने का इसको बहुत ऐसा गर्व है, अपना अभिमान है, चलो। तो क्या किया उसने, उसका घोंसला ही तोड़ दिया। तो उपदेश ऐसे ही जीवों को देना कि जो अपना घोंसला नहीं तोड़ दे। समाज में तो ये ऐसी बातें बहुत चल, विरोध के नाम पर, ये जो स्वाध्याय को ही विरोध करते, स्वाध्याय को तो विरोध करते ही है, जिनवाणी को तो फेंक ही देते हैं बाहर, घरों के बाहर, मंदिरों के बाहर, और तो और स्वाध्याय करने वालों के भी विघ्न होता है। तो ऐसे जीवों के परिणाम देख देख कर हम क्रोधित नहीं हो जाए। किस जीवों को उपदेश देना ये भी अभी देशना लब्धि के प्रकरण में आने वाला है। तो वो उपदेश सुनने के भी पात्र नहीं, जो इतने तीव्र कषायी जीव है वो उपदेश सुनने के लिए भी पात्र नहीं होते। देखो ये हमारे अनुभव की बात है, हम तेल उबालते हैं तो उबालते हुए तेल में थोड़ा ठंडा पानी डाले तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा ना, नहीं होता है, क्या होता है, आग लग जाती है। और उसमें वो पकौड़े वाला भजिया वाला पीट डाले तो कुछ नहीं होता, तल के आता है अच्छी तरह से। वैसे जो तीव्र कषायी जीव है वो तीव्र कषायी जीवों को विषय कषायों की बातें बताएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मजे से सुनते हैं। परंतु जिनवाणी जैसा शीतल, उनके ही जो कल्याण की बातें है, उनके कल्याण की हो तो उनके भी कल्याण की बातें सुनकर भी इतना क्रोध आता है, चिढ़ जाते हैं कि वो सुनाने वाले की तरफ ही उसका द्वेष करते, उनमें विघ्न डालते, बाधा डालते। तो ऐसे जो तीव्र कषायी जीव है उनको तो उपदेश सुनने की भी अभी पात्रता नहीं है ना। तो यहाँ इसलिए ये कंडीशन डाली, मंद कषाय रूप विशुद्धि वाला जीव, तो इतनी मंदता हुए बिना वो शास्त्र सुनने के लिए तैयार होना होगा नहीं, सुनने को आएगा नहीं, सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो समझेगा नहीं, क्योंकि उसके तो विचार वो बाहर की, यहाँ बैठे बैठे भी बाहर की सोचते रहेगा, अपनी विषय कषायों की बातें उसके मन में चलती रहेगी। तो कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। तीव्र कषायी जीवों को धर्मानुराग परिणाम नहीं होते, उन्हें देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती। कोई आत्मा की बात सुनाने लगे तो कहेंगे आत्मा दिखा, जैसे कि बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध करे, ऐसे कहते मराठी में कहा, बाप को दिखाओ नहीं तो उसका श्राद्ध करो, क्योंकि उनमें पद्धति है ना अन्य ये मराठी लोगों में कि वो तो पिताजी गुजर गए तो उनका श्राद्ध करते। तो बाप है क्या, नहीं है, नहीं है ना तो उसका श्राद्ध करो, चलो ऐसा आत्मा कहाँ है दिखाओ नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसा दिखाने वाले आत्मा थोड़ी चीज है, जैसे पुद्गल दृश्य है, ये दो रूपी पदार्थ है वो तो दिखाई देगा, तो आत्मा दिखाई कैसे देगा, उसको तो जाना जा सकता है, मतलब तो दिखाने की चीज है ही नहीं। तो क्या कहते हैं, आत्मा दिखाओ नहीं तो हम नहीं मानेंगे। आप दिन भर ये आत्मा फात्मा की बातें करते हो तो हमें ये तो कोई अच्छी नहीं लगती है। तो उन्हें देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती, ऐसा ही कहते ना, ये स्वर्ग नरक किसने देखे, ये आलू में इतने जीवे किसने देखे, ये किसने देखे, यानी उनको सर्वज्ञ की श्रद्धा है ही नहीं, देव का स्वरूप ही मालूम नहीं। यहाँ तो नमोकार मंत्र कहेंगे और यहाँ कहेंगे किसने देखा है, यानी उसने तो भगवान का अभिनय किया, भगवान का अवर्णवाद किया उसने, ये सर्वज्ञ का स्वरूप जाना नहीं और उसका इनकार किया। अकेले भगवान का ही नहीं इनकार किया तो सर्वज्ञ स्वरूप ऐसे अपना स्व का इनकार किया, यानी उसने अपना स्व का इनकार किया, इनकार किया उसके एग्जिस्टेंस से उसने ना कही, उसके हयाती से उसने ना कहा है, तो उसका अर्थ है उसने अपना आत्मघात किया है। तो आत्मघाती तो महापापी होता है, तो उसमें उसके लगता है नहीं नहीं ये हमने भगवान किसने देखे, ये तो ये अपना ही स्वयं का वो वहाँ आत्मघात कर रहा है उसने देव के अवर्णवाद में। तो देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती, आचार्यों का उपदेश सुनने की वृत्ति उनमें नहीं पाई जाती, उनमें ऐसे भाव ही उत्पन्न नहीं होते। जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है उसे सम्यक तो कैसे हो सकता है। ऐसा ही बाय चांस सम्यक तो हो जाए, आत्मा की बात भी नहीं सुनेगा और आत्मा पर श्रद्धा भी नहीं है और मैं कौन हूँ पर कौन इसका विचार भी नहीं है और जीव को ऐसे ही सम्यक तो हो जाए, ऐसी तो बातें बन नहीं सकती। इस कारण संक्लेश परिणाम वाले तीव्र कषायी जीवों को सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता नहीं होती। तुम पूछोगी प्रश्न है, नारकी जीवों में तो अशुभ लेशा होती है, उनमें तीव्र क्रोधादि परिणाम पाए जाते हैं, तो उन्हें मंद कषाई कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है चारों गति वाले जीवों को सम्यक तो होता है। सातवें नरक के नारकी को भी प्रथमोक्षम सम्यक तो होगा, हो सकता है, तो वहां तो वो तो लड़ते झगड़ते रहते, क्रोध की मुख्यता होती है, और यहाँ तो आप कहते कि मंद कषाई वाले बिना वो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। मंद कषाई कह सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, स्वर्गों के देवों में तीन शुभलेशा होती है, उन्हें तो हम मंद कषाई कह सकते हैं, ये प्रश्न है कि नारकी में तो अशुभलेशा है, उनमें सम्यक तो कैसे हो सकता है। देव की बात तो पूछेंगे तो देवों में तो मंद कषाय होते हैं, क्योंकि वहां तो नियम से तीन शुभलेशा ही होती है। भवनत्रिक में भी पीतलेशा होगी, ऊपर के स्वर्गों में भी नीचे नीचे वाले वो पीत फिर पद्म फिर शुक्ल, ऐसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में शुक्ल लेशा होगी, तो उनमें तो मंद कषाय आप कहती है तो बराबर है, मतलब नरकों में कैसा पॉसिबल है। नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक या स्वर्ग की लेशा पाई जाती है, यानी सातवें नरक में हमेशा कृष्ण लेशा ही पाई जाएगी, पहले नरक में कपोत लेशा ही होगी, बीच वाले नरकों में नील लेशा ही होगी, स्वर्गों में भी अपने अपने स्वर्ग की अलग अलग जो जो लेशा वहाँ है वही रहेगी। परंतु बात क्या है कि एक एक लेशा में तो असंख्यात लोक प्रमाण इतने स्थान होते हैं, यानी इतनी वैरायटी, लेशा एक होगी और उसमें कषायों के परिणाम कितने अलग अलग भिन्न भिन्न, असंख्यात लोक, हमने दोपहर में देखा था ना एक लोक में कितनी संख्या हो जाती, तो असंख्यात लोकों में संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी, इतने अलग अलग इतने प्रकार के वहां परिणाम पाए जाते हैं। तो एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण इतने स्थान होते हैं, जब मंद कषाई कहते हैं तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से उसके कषाय मंद हो जाते हैं, ऐसा समझना। सातवें नरक का जो कृष्ण लेशा वाला जो नारकी जीव है उसके जो कषाय थे उसकी लेशा तो कृष्ण ही रहेगी, परंतु पूर्व में जो तीव्र कषाय थे उसमें मंदता है ना, और स्वर्गों में पीत लेशा है अभी जितने परिणाम है उससे भी उसकी कषाय मंद हो जाएगी, यानी लेशा में उसकी विशुद्धि और बढ़ेगी। मनुष्य और तिरियंचों में चौथे गुणस्थान तक तो छह लेशा पाई जाती है, परंतु यानी सम्यक तो होने के बाद जो क्षोभम सम्यक दृष्टि है उसमें तो छह लेशा पाई जाएगी, परंतु प्रथमोक्षम सम्यक तो होने से पहले उन्हें नियम से पीत पद्म या शुक्ल लेशारूप मंद कषाय में ही सम्यक तो प्राप्त होता है। ये सम्यक तो प्राप्ति की बात है, कंडीशन किसके लिए? मनुष्य और तिरंजों में। देवनारकी में अपनी अपनी लेशा रहेगी और मनुष्य और तिरंजों में तीन शुभ लेशा में ही प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होगी। बाद में क्षोक्षम सम्यक दृष्टि हो जाए, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाए तो उसकी लेशा बदल सकती। हम देखते ना, श्रेणी का राजा नरक में गया तो मरते समय तो उसकी लेशा तो अशुभ ही हुई, क्योंकि नरक में जाने वाले की तो अशुभ लेशा में ही मरण होता है, है? तो बाद में तो उसकी अशुभ लेशा हो जाए उसकी बात यहाँ नहीं करे। जो प्रथमोक्षम सम्यक को अभी प्रकट करने वाला जीव है वो उस समय उसकी कौन सी लेशा है, तो उसके तीन शुभ लेशाएं होती। तो नियम से पीत पद में शुक्ल लेशारूप मंद कषाय में ही सम्यक प्राप्त होता है, अशुभ लेशा में नहीं। ये जो हमने एक एक कंडीशन देखी थी उस पर यह विचार चल रहा है। सम्यक की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है, नींद में नहीं। जागृत अवस्था में भी साकार ज्ञान उपयोग वाले को होगी, निराकार दर्शन उपयोग वाले को सम्यक का प्रारंभ नहीं हुआ। ये प्रारंभ की बात है। किसी को उपशम सम्यक के काल में बाद में दर्शनोपयोग हो सकता है, इसको कहते हैं शास्त्र में भजितव्य, यानी पॉसिबिलिटी, ऑप्शन है। ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है, और दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं क्योंकि उसमें मात्र सामान्य अवलोकन अर्थात प्रतिभास होता है। पदार्थों के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। जैसे सुगंध को जाना इस बात को कहना हो तो हम कहेंगे कि ज्ञान सुगंधाकार हुआ। इसमें आकार का अर्थ आकृति या शेप नहीं है। ज्ञानाकार और गेयाकार की चर्चा हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में विस्तार से की ही की। अब यहाँ उसका विस्तार नहीं लिया है। अब कौन से योग वाले को होगा? अब ऐसा एक प्रश्न भी यहाँ आया था अभी कि धवला और द्रव्य संग्रह की ब्रह्मदेवकृत टीका में दर्शन को स्वप्रकाशक और ज्ञान को परप्रकाशक कहा है, और जब सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव होता है तो साकार उपयोग कहा है, तो वे दोनों का समाधान कैसे? मूल में तो मूल जिस ग्रंथ का आप आधार कहकर प्रश्न पूछ रहे हैं वो ग्रंथ आप मुझे बताओ, और उसमें क्या कथन है वो मुझे बताओ, तब उस पर हम विचार कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो ग्रंथों के है अपना विषय तो अलग चल रहा है, प्रश्न पूछने की ना नहीं है, परंतु ये विषय को छोड़कर हो जाता है, ख्याल है ना? तो जिन ग्रंथों के आधार से आप प्रश्न पूछते हैं वो ग्रंथ और जहाँ वो बात आई है उस ग्रंथ के वो लाइन मेरे सामने हो तो इस प्रश्न का मैं आपका बराबर उत्तर दे सकूंगी, फिर वो भी अंतिम 5-10 मिनट में, क्योंकि अपना विषय छोड़कर उसमें हम उलझना नहीं चाहते, एक बात। और दूसरी बात, अब यहाँ जो स्वपर प्रकाशक की बात है वो ज्ञान तो हमें मालूम है स्व और पर दोनों प्रकाशक है, वैसे दर्शन भी स्व पर दोनों प्रकाशक है। नियमसार में गाथा आई है, दर्शन भी स्व पर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, और वहाँ जो स्व प्रकाशक पर प्रकाशक की बात है उसकी अपेक्षा अलग है। फिर भी मैं चाहूंगी कि जिसको ऐसे प्रश्न पूछना है वे ग्रंथ सामने उपस्थित करे तो ही उसका थोड़ा समाधान होगा। चर्चा तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अपना विषय छोड़कर अन्य विषय में हम उलझना नहीं चाहते, ख्याल है ना? तो जिसका भी ये प्रश्न है वो इसका इस तरह से ख्याल में रखे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मनोयोग वचन योग या काय योग में से किसी भी योग वाले जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। ये योग की बात आ गई। अब उपरोक्त 5 लब्धि पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। अब हमारा प्रश्न क्या है, कोई पूछते हैं कि हमें कितनी लब्धि प्राप्त है, हैं? क्योंकि हम अनेक सालों से शास्त्र साधना करते आए हैं तो हमें तो 4 लब्धि है कि नहीं है,
निर्णय तो करना है ना भाई आपको।
जीव चार लब्धि में ही क्यों संतुष्ट हो रहा है? अभव्य जीव को भी अनंत बार प्रायोग्य लब्धि तक चार लब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि भव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक आकर करण लब्धि में नहीं जाएंगे, यानी क्या आत्मसन्मुख पुरुषार्थ नहीं होगा, तो उन्हें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा और महानता जब तक भाषित नहीं होगी, तब तक इन तत्वों को सुनकर, याद कर और धारणा में रखकर भी कोई फायदा नहीं है। उस रूप परिणमन होगा तो ही कार्य होगा। कार्य होगा यानी करण लब्धि और आगे वाला सम्यक तो हो जाए। इसमें एक एक लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त है और सबका मिलकर काल भी एक तो इतने सालों से सुनते आए हैं तो हमको देशना लब्धि भी है और उस पर विचार करते तो प्रायोगिक लब्धि भी है। तो हमारी प्रायोगिक लब्धि इतने सालों से चल रही ना, 25-30 सालों से चल रही है कि नहीं, ऐसा हमें तो प्रश्न उठता है कि 30 साल से हमारी प्रायोगिक लब्धि चल रही है। हाँ, उसका समय कितना है? एक अंतर्मुहूर्त है। एक एक लब्धि का काल भी एक अंतर्मुहूर्त और सबका मिलकर भी एक अंतर्मुहूर्त, यानी और करण लब्धि को भी मिलाओ, उपशम सम्यक्त को भी मिलाओ, तब भी उस सबका मिलकर एक अंतर्मुहूर्त ही होता है, उससे बड़ा काल नहीं। देखो, सबका मिलकर काल भी एक अंतर्मुहूर्त है। तत्व जिज्ञासा यानी आत्मा को जानने की तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तब विशुद्धि भी वृद्धिंगत होती, वृद्धिंगत यानी बढ़ती चली जाती। उस समय देशना सुनकर या पूर्व में सुनी हुई देशना को यानी जिनेन्द्र कथित तत्वों को विचार में लेता है, तत्व विचार और तत्व निर्णय करते लगता है, तब ये चारों ही लब्धि एक साथ होती है। यानी हो सकता है कि देशना पूर्व में सुनी, स्वाध्याय हमने सुना, अभी अन्य काम में लग गए, फिर शाम को हमने बैठे, हम रात को हमको जब फुर्सत मिली बैठे और फिर शास्त्र खोलकर देखा, ये जो शास्त्र में सुना था उस पर हम विचार करें, तत्व विचार में उसको दोबारा लिया, तब ये चारों ही लब्धि एक साथ है। हमने क्योंकि स्वाध्याय कर रहे तो हम बाकी काम छोड़कर उसमें यानी उपशम लब्धि तो उसमें है ही, विशुद्धि लब्धि भी हो गई, देशना तो मिली है, अब उस पर विचार भी चल रहा है तत्व विचार, तो प्रायोगिक लब्धि भी आ गई और आत्मसम्मुख परिणाम हो गए तो करण लब्धि भी हो जाए। तो एक साथ ये सभी जब जब तत्व विचार चलेगा तब, अभी एक घंटा स्वाध्याय सुना और जाके हम दुकान में बैठे या रसोई घर में लगे या पड़ोसी से बातचीत करने लगे, तो वहां ये कोई लब्धि नहीं है। क्या है ना, जब तत्व विचार में चलेंगे तब ये एक साथ सभी उपलब्ध रहेगी। इसीलिए देखो, जब तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है जीव, तब ये चारों ही लब्धि एक साथ होती है। इसलिए देशना तो पूर्व भव की भी हो सकती है। अब इसकी जो अधिक चर्चा है वो देशना लब्धि के प्रकरण में करेंगे। देशना किसकी होती है, कब होती है? तुम कहोगे बस तत्व जिज्ञासा हुई, तत्व सुने, याद किए और हो गई आत्मानुभूति, कुछ करना धरना नहीं रहा। जीव को क्या लगता है, कुछ करना चाहिए। तो द्रव्यानुयोग जानकर ही काम हो जाएगा, करणानुयोग नहीं जाने तो भी हो जाएगा ना। चरणानुयोग की तो अभी जरूरत ही नहीं है कि वो तो मुनियों का काम है, है? देखो ये नहीं, इसमें क्या होता है कि करना नहीं क्यों जानना, क्योंकि उससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, जीव ने आज तक कुछ क्रिया करके ही धर्म होना माना था, इसमें क्या करूँ, अभी इतने शास्त्र पढ़े, अभी हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न तो यही होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी क्रिया करें, कौन सा शुभ भाव करें, किस प्रकार से चिंतन करें, वो ध्यान कैसे करना, उपयोग को अंदर बाहर कैसे ले जाना, ये नहीं कुछ करना चाहता है जी। देखो तो आज तक कुछ क्रिया करके ही धर्म होना माना था, अब क्रिया से कुछ नहीं होगा सुनकर क्रिया छोड़ना चाहता है। मान्यता तो वैसी रही, पहले तो मानता था क्रिया से होगा तो क्रिया करने में जुट गया, अब सुना कि क्रिया से नहीं होने वाला, ये तो जड़ की क्रिया है, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, यानी मैं कर सकता हूँ परंतु अभी नहीं करूँगा, यानी मान्यता तो वैसी ही वैसी रही। तो क्रिया से कुछ नहीं होगा सुनकर क्रिया छोड़ना चाहता है, उसमें भी इसके पर की कर्तृत्व बुद्धि तो कायम ही रही, क्योंकि मैं कर सकता हूँ परंतु अब नहीं करूँगा, ऐसा यह जीव मानता। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य में देव गुरु शास्त्र विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रिया इनको मानकर इसने अपनी कारण विपरीतता कायम रखी। कारण विपरीतता ने अपने कार्य का कारण इसमें बाह्य अन्य किसी चीज को मान लिया। खुदेव को गुरु कुशास्त्र से होगा ना सम्यक दर्शन, तो कहते नहीं होगा। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु से तो होगा कि नहीं होगा, तो यानी निमित्त से ही मेरा कार्य होगा। ये जो कारण की जो विपरीतता है, कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण भी होता है, वो कारण कहाँ होता है उसको भी ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें विशिष्ट कार्य करना है तो उसके कारण कहाँ है उसको भी निश्चित करना पड़ेगा। तो इसने अपने कारण कहाँ माने, देव गुरु शास्त्र आदि बाह्य में या विशिष्ट शारीरिक आचरण में उसने कारण माना है। विशिष्ट आचरण में या शारीरिक क्रिया में इसके मानकर अपनी कारण विपरीतता उसने कायम रखी। ये जो मिथ्या ज्ञान है उसमें तीन प्रकार की विपरीतता होती है, कौन कौन सी लक्ष्मी बहन? हाँ, स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वाली कारण विपरीतता कि अपने कार्य का कारण किसी परद्रव्य को मानना, जानना, ज्ञान की विपरीतता है। यहाँ हमारा विषय कर्णान योग द्वारा पांच लब्धि समझने का है, तथापि जो जीव सम्यक तो प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणान योग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है। ये सारे जो लब्धि के जो परिणाम है वो सहज होते हैं, सोच सोच कर या जबरदस्ती से लाए नहीं जाते। उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है। ये कौन सा जीव है अभी सम्यक दर्शन की ये पात्रता वाला जीव? अरे वह अष्टमूल गुण का धारक होता है, अर्थात पांच उदुम्बर फल और मांस मध्य और मधु का त्यागी होता है। उसके सप्त व्यसनादिक नहीं होते, स्वच्छंदी जीवन तथा हिंसादिक क्रूर परिणाम उसके नहीं रहते। वह अभक्ष भक्षण का त्यागी और अन्याय अनीति का त्यागी होता है। द्रव्यानुयोग के अनुसार वह तत्व विचार करता है, चारों ही अनुयोगों के द्वारा कैसे वो कार्यकारी होता है उसकी बात चलती है। तो चरणानुयोग में ये जो मुख्य बात है पात्रता के रूप में, इससे सम्यक दर्शन नहीं होने वाला हो, जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके ऐसी पात्रता सहज होती है। द्रव्यानुयोग के अनुसार वह तत्व विचार करता है और प्रथमानुयोग पढ़कर वह संसार से भयभीत होता है। तीर्थंकरादि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है, क्योंकि अन्य जो भी इतना पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें उसका भी पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। कर्णानुयोग के कथन अनुसार कर्मों की अवस्थाएं सहज स्वयमेव होती है। जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व सहज प्राप्त होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए पात्रता कैसी होती है इसकी चर्चा हमने कर्णानुयोग परिचय के पुस्तक में विस्तार से देखी ही थी।
अब यहाँ हमारा विषय है प्रथमोक्षम सम्यक्त के प्राप्ति की प्रक्रिया, यानी उसमें जब जब सम्यक्त होता है प्रथमोक्षम सम्यक्त, तो जीव के परिणामों में क्या बनता है और कर्मों में क्या अवस्थाएं बनती है, इसकी यहाँ चर्चा हो जाएगी। इसमें जीव के परिणाम तथा कर्मों की अवस्था के वर्णन द्वारा हम सम्यक्त होने के पूर्व होने वाली पांच लब्धि का स्वरूप देखने जा रहे हैं। अब हम एक एक लब्धि का यहाँ स्वरूप देखेंगे। तो हमने पांच लब्धि के नाम देखे थे, कौन से नाम है रूपल बताओ? करण लब्धि, ये पांच लब्धि है। अब एक एक का स्वरूप हम क्रमशः देखेंगे। दोपहर में हमने क्षोक्षम क्या होता है उसे देखा, जरा ये परिभाषा निकाल कर देखना, कितने पेज पर थी, 50 पर थी, कितने पर थी? गुजराती 50 है क्या, हिंदी 50? गुजराती 47। ये तो क्षोक्षम अलग बात है और क्षोक्षम लब्धि अलग बात है, दोनों में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। पहले हम क्षोक्षम को दोबारा याद कर रहे हैं, क्षोक्षम लब्धि और क्षोक्षम, ये दो बातें भिन्न भिन्न है, एक सी है नहीं। यानी जीव संघी पंचेंद्रिय हुआ तो उसको क्षोक्षम लब्धि मिल गई, ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है ना, क्योंकि हम तो ऐसा ही समझते थे आज तक कि संघी पंचेंद्रिय है तो उसको क्षोक्षम लब्धि है ही, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि लब्धि का काल कितना है, एक अंतर्मुहूर्त, और हम संघी पंचेंद्रिय कब से है, गर्भ से है ना संघी पंचेंद्रिय, मनुष्य आयु शुरू हुई, विग्रह गति में भी संघी पंचेंद्रिय थे, गर्भ में भी संघी पंचेंद्रिय थे, बचपन से भी संघी पंचेंद्रिय है, नींद में भी संघी पंचेंद्रिय है, कोमा में जाएंगे तो भी संघी पंचेंद्रिय है, उसको क्षोक्षम लब्धि नहीं कहेंगे। तो संघी पंचेंद्रिय पना पाना ये अलग बात है और क्षोक्षम लब्धि अलग बात है। तो उसकी चर्चा करने के पहले क्षोक्षम की परिभाषा दोबारा देख लेते। देखो हम सब एक साथ बोलेंगे, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को क्षोक्षम कहते हैं। तो ये क्षोक्षम किस में होगा, घाती में क्या घाती में, सर्वघाती में होगा कि देशघाती में, देशघाती प्रकृति में होगा, बराबर। अब हम क्षोक्षम लब्धि देखने जा रहे हैं, बस ये ख्याल में रखकर अभी क्षोक्षम लब्धि को देखें। ये जो प्रकरण छठा है उसकी बात अब यहाँ हम ले लेंगे। ये सेकंड पैराग्राफ, क्षोक्षम शब्द से अब तुम परिचित हो। अभी हमने देखा ना क्षोक्षम क्या है, ज्ञान के उघाड़ को क्षोक्षम या क्षोक्षम ज्ञान कहते हैं। क्षोक्षम कर्म की अवस्था का भी नाम है जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो ऐसा जो क्षोक्षम है वो मिथ्या दृष्टि को होगा कि समय दृष्टि को, क्षोक्षम की बात है। क्षोक्षम किसको होता है, दोनों को होगा कि कहाँ तक होगा, 12वें गुणस्थान तक होगा। अनादि से क्षोक्षम तो चल ही रहा है, ज्ञान का दर्शन का जो ये अंतराय संबंधी जो है वो क्षोक्षम तो सभी को है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक को, और पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों को ये क्षोक्षम चल रहा है। ज्ञान वाला जो है, दर्शन वाला है, जो पांच जो है ना दान दाप वगैरह संबंधी का क्षोक्षम अनादि से ही चल रहा है। तो ये तो क्षोक्षम ये कर्म की अवस्था का नाम है।
अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षोभशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है। सभी यानी यहाँ अरिहंत सिद्धों को नहीं लिया हूं कि उनमें तो केवल यहाँ नहीं, अन्य जो सब छन्नस है तो अनादि से ही सभी जीवों में एक क्षोभशम पाया जाता है। मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान से क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान तक और एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक सब में इन कर्मों का क्षोभशम पाया जाता है। यानी क्षोभशम शब्द कहाँ कहाँ आता है, किस किस में होता है, उसकी बात चल रही है। क्षोभशम नामक सम्यक तो भी है जो चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक पाया जाता है और क्षोभशम नाम का चारित्र भी होता है। इसकी भी चर्चा हमने दोपहर में विस्तार से की थी। हमारी बात क्षोभशम की नहीं है अपितु क्षोभशम लब्धि की है। यानी क्षोभशम अलग बात है और क्षोभशम लब्धि ये कुछ अलग बात है। क्षोभशम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है, परंतु संगी पंचेंद्रिय होना अर्थात ज्ञान का इतना उघाड़ होना क्षोभशम लब्धि नहीं कहलाती। क्या कहा? क्षोभशम लब्धि किसको होगी? एकेंद्रिय से असंगी तक तो होगी ही नहीं, किसमें पाई जाएगी? तो संगी पंचेंद्रिय में ही पाई जाएगी। परंतु अकेले संगी पंचेंद्रिय है इसलिए संगी उसको क्षोभशम लब्धि है, ऐसा नहीं। जिसको क्षोभशम लब्धि होगी किसको होगी? तो संगी को ही होगी, परंतु वो संगी पंचेंद्रिय है इसलिए उसको क्षोभशम लब्धि, ऐसा नहीं। तो क्षोभशम लब्धि का कुछ अलग अर्थ है, तो उसकी क्या परिभाषा है उसको अभी हम देखते हैं। तो क्षोभशम लब्धि की परिभाषा मिला गुजराती में 65 में। तो क्षोभशम लब्धि किसे कहना? तो ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृति। अब यहां रुकते हैं। ज्ञानावरणादि यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय आदि में सब लेना, ये तो घाती कर्म तो अप्रशस्त है ही है। आघाती में भी है क्या कोई अप्रशस्त? आघाती में है कौन से? जैसे अघाती की अप्रशस्त प्रकृतियां है, असाता वेदनी है, नरकायु है, अशुभ नाम है, नीच गोत्र है आदि जो प्रकृतियां हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्रशस्त प्रकृति। तो ज्ञानावरणादि समस्त लिखा है, थोड़ी नहीं भी, ज्ञानावरणादि जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां है, यानी ज्ञानावरण की सब, दर्शनावरण की सब, मोहनीय की सभी, अंतराय की सभी, और अघातिया में भी जो अप्रशस्त प्रकृतियां है, असाता वेदनीय, जो नरकायु, अभी आयु में तो क्या उसमें घटना बढ़ना है, उसमें तो कुछ अनुभव घटने बढ़ने की बात नहीं है, परंतु अन्य जो है, अशुभ नाम जो है और निज गोत्र है, ये सभी जो अप्रशस्त प्रकृतियां है, अभी उनमें क्या होता है उसकी बात पढ़ेंगे अभी आगे। तो ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति यानी प्रत्येक समय में हर समय क्या होता है उसमें अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर, अनंत गुणा घटना का अर्थ होता है अनंतवा भाग होना, नहीं समझो? अभी 16 संख्या है उसको 4 गुणा घटता कहेंगे तो क्या समझना? उसका चौथा भाग, 4 गुणा घटता, ये भाषा ऐसी है। अकेला 4 गुणा कहेंगे तो 16 को 4 गुणा करेंगे तो 64 होगा, परंतु 4 गुणा घटता कहेंगे तो 16 को 4 से भाग देना तो 4 संख्या है, बराबर? अनंत गुणा घटता है ना, क्या पहले जितना अनुभाग था उसका अनंतवा भाग अभी रहेगा, कितने समय के बाद? प्रत्येक समय में। एक समय कितना सूक्ष्म होता है हमने देखा था कि एक सेकंड जो हम गिनते हैं उसमें तो सैकड़ों आवली होती है, और एक आवली में कितने हमने समय देखे थे, जगन नियुक्ता संख्या। तो एक समय कितना सूक्ष्म होगा? तो एक समय में ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का जितना अनुभाग अभी पड़ा है सत्ता में, वो प्रत्येक समय में उसका अनंत अभाग रहता है, फिर अगले समय में उससे भी अनंत अभाग होता है, उससे अगले समय में उससे भी असंख्यात अभाग। ये जो अंतर्मूर्त काल जितना उसका समय है, वो हर समय में उसका अनंत अभाग अनंत अभाग अनंत अभाग होता है। तो क्षोक्षम लब्धि किसे कहना, कि जिस काल में उसका काल अंतर्मूर्त है, तो जिस काल में प्रत्येक समय में ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव यानी फल देने की शक्ति अनंतवाभाग 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 होती जाती है, और वैसा अनंतवाभाग होकर उदय में आती है, तो अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, क्योंकि फल तो जब मिलेगा उदय में आएगा, अंदर सत्ता में पड़े पड़े अनुभाग घटेगा तो हमें क्या उससे। अनुभाग घटकर जितना उदय में आने योग्य था उसका अनंत भाग होकर उदय में आएगा तो फल क्या मिलेगा। जो तीव्र अनुभाग सहित उदय होता तो ज्ञानावरण का तीव्र अनुभाग का उदय होगा तो ज्ञानहीन होगा। अब क्या होने लगा, उसका अनंत भाग ही होने लगा, यानी आवरण हल्का हो रहा है, आवरण घटता चला जा रहा है, आवरण घटेगा तो ज्ञान खिलेगा। तो जीव को ऐसी विवेक शक्ति उत्पन्न होती है कि स्व क्या है पर क्या है, अभी उपदेश सुनना उसको ग्रहण करना उसको याद रखना उस पर विचार करना, ऐसी जो उसकी विशिष्ट बुद्धि की जो योग्यता है वो ये ज्ञानावरणादि समझ नहीं लेना, उसमें अकेले ज्ञान को नहीं लेना, अन्य भी सारे जो संयोगों में है या कुछ अन्य बरद्रव्यों में भी जो बातें बनती है जहाँ जो कुछ पॉसिबल है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हीन होकर उदय में आएगा, तब उस काल में क्षोक्षम लब्धि होती है, अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहेगी। अब मिथ्यात्व में भी पहले मान लो तीव्र बांधा हो, क्षोक्षम लब्धि शुरू हो गई उसकी, तो मिथ्यात्व में चारित्र मुनि में भी अनुभाग घटकर उदय में आना शुरू होगा, प्रति समय अनंत भाग अनंत भाग अनंत भाग अनंत भाग। तो मुझे बताओ जो क्रोधादि जो परिणाम वाले जो कर्म थे उसका अनंत भाग अनंत भाग होने लगा, तो उदय तो अभी मंद कर्मों का चल रहा है, यानी कर्मों का उदय भी मंद 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 हो रहा, तो जीव के भाव भी उस समय कैसे चल रहे होंगे, मंद मंद, यानी उसके मंद कषाय हो रहे हैं ना। क्षोक्षम लब्धि में सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता होकर घटते हुए उदय में आता है, तो नेचुरली वहाँ जीव के जो भाव है वो मंद कषाय रूप है, इसलिए क्षोक्षम लब्धि को तो कारण कहते हैं, और उसी के फलस्वरूप उसी समय ये कषाय में मंदता सहज आती है तो उसको कहा विशुद्धि लोग। उसके लिए नहीं, अभी विशुद्धि लब्धि के लिए दर्शन करना पड़ेगा, जाके शास्त्र में बैठना पड़ेगा, ये बैठता है जीव उसकी बात नहीं है, परंतु क्षोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ये एक साथ ही चलती है, कारण कार्य संबंध है उसमें। क्षोक्षम लब्धि में तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता जाता है, और विशुद्धि लब्धि में वो मंद कषाय रूप विशुद्धि तक बढ़ती है। यहाँ तो मंद कषाय इतना ही लेना, विशुद्धि का अर्थ अब यहाँ जो हम लेंगे तो मंद कषाय वाला लेंगे। देखो अनंत गुणा घटता का भी हमने अर्थ देखा, तो जीव ने पूर्व में बांधे हुए और सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग घटता जाता है, और प्रति समय पूर्व अनुभाग से अनंतवा भाग रूप रह जाता है, और उदय में आते समय भी अनंतवा भाग होकर उदय में आता है, यानी उसका जो फल जीव को मिलता है वो जो जिस प्रमाण में तीव्र बांधा है अप्रशस्त कर्म उस रूप उसको नहीं मिल रहा है, उसका फल भी मंद होकर अभी मिलेगा उसको, ख्याल है ना। यहाँ केवल अप्रशस्त कर्मों की ही बात है, प्रशस्त कर्मों की नहीं। पहले हमने अप्रशस्त कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी, याद है ना, सर्वघाती कर्म अप्रशस्त ही है, अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद है, घाती कर्मों में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के
अपने अपने अनंत स्पर्धक है, उनमें मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग तक के स्पर्धकों के चार चार भेद या स्थान हमने देखे थे, याद है ना? कौन स्थान? लता, दारू, अस्थि और शय। आघाती कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृति है उनके स्पर्धक के भी चार चार स्थान है, नीम, पांजी, विष और हला। इन चार चार स्थानों में अनंत अनंत स्पर्धक और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणाएं होती हैं तथा एक एक वर्गणा में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। अब अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंत वा भाग वाला जो अनंत है, देखो जैसे हमने असंख्यात के या अंतर्मूर्त के भी बहुत प्रकार देखे ना, वैसे अनंत के भी अनंत प्रकार होते हैं। नहीं पता, जैसे लाखोपति किसको कहेंगे? जिसके पास लाख रुपए, एक लाख रुपए और एक पैसा, वो क्या कहेंगे? लाखपति। दो पैसा, दो लाख, चार लाख, 99 लाख, तो 99 लाख को भी लाखोपति कहेंगे। 99 लाख, 99,999 लाखोपति, तो लखपति के कितने भेद हुए? वैसे ही यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? अनंत की। अनंत के भी अनंत प्रकार पाए जाते। अब उसमें वाला कौन सा अनंत लेना? निश्चित रूप से तो जो पर्टिकुलर अनंत है, कौन सा? अभव्य से अनंत गुणा और सिद्ध राशि के अनंत भाग। नहीं के 16 ये संख्या क्या है? 4 से 4 गुणा है और 64 का चौथा भाग। दोनों तरह से उसको फिक्स किया ना, वैसे कौन सा वाला अनंत? सिद्ध राशि का अनंत भाग और अभव्य का अनंत गुणा वाला। ऐसा जो अनंत है उतने अनंत की बात है, तो ऐसा जो अनंत है उतने वर्ग यानी उतने परमाणु एक वर्गणा में होते और उतनी ही वर्गणाएं एक स्पर्धक में होती, यानी वो कितना बड़ा अनंत होगा। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत वे भाग प्रमाणहीन होती जाती है और उदय में आती रहती है। अब क्षोक्षम और क्षोक्षम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है वह तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। देखो क्षोक्षम में तो हमने मात्र देखा था, वह अनेक कर्मों में बनता है। अब यहाँ किसमें बनता है उसकी बात अभी हमने देखी। क्षोक्षम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है और क्षोक्षम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है और वह कार्य भी सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों के अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों में होता रहता है। देखो क्षोभक्षम में तो अनुभाग जो है अप्रशस्त कर्मों का, जो घाती कर्मों का अनुभाग बढ़ भी सकता है, फिर भी उसको हम क्षोभक्षम कहेंगे, है ना? क्या कहा? अभी कोई जीव है, संगी पंचेंद्रिय है, अभी ज्ञान का उभार तो संगी पंचेंद्रिय जितना ही है, परंतु अभी जितना ज्ञान का उघाड़ है, मान लो कुछ बीमारी आ जाए, कुछ विस्मरण होने लगे, बुढ़ापा आ जाए, तो वो ज्ञान में हीनता चली गई, फिर भी संगी पंचेंद्रिया चल रहा है, संगी पंचेंद्रिय बना। क्षोभक्षम तो उसका है, परंतु क्या उसको हम क्षोभक्षम लब्धि नहीं कहेंगे? ज्ञान की हीन दशा हो जाती है तो क्षोभक्षम लब्धि नहीं कहेंगे, कोमा में चला गया। क्षोभक्षम ज्ञान तो है परंतु क्षोभक्षम लब्धि नहीं है। तो क्षोभक्षम में और क्षोभक्षम लब्धि में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसकी चर्चा चल रही है। तो क्षोभक्षम तो देशघाती प्रकृति में ही देखा था और क्षोभक्षम लब्धि में क्या है? अभी जो मिथ्यात्व नाम की सर्वघाती प्रकृति है उसमें भी उसका अनुभाग घटकर उदय में आएगा, उसमें क्षोभक्षम नहीं होता, उसको हम मिथ्यात्व का क्षोभक्षम नहीं कह सकते। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का उदय हो रहा है यहाँ। अभी तो जीव मिथ्या दृष्टि है ना, उसकी बात चल रही है। प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त करने वाला है, अभी तो क्षोक्षम लब्धि की बात हो रही है। तो उसमें मिथ्यात्व का भी अनुभव घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव घटता आ जाता है और घटकर उदय में आता है। अनंतानुबंधी का अनुभव घटेगा कि नहीं घटेगा? सभी कर्मों का घटेगा, अप्रशस्त ये भी घाती कर्मों में तो घटेगा ही घटेगा, यानी वो भी सर्वघाती हो प्रकृति या देशघाती हो, सभी का अनुभव घटेगा। तो मिथ्यात्व तो भी मंदता की ओर चल रहा है, अनंतानुबंधी भी मंदता की ओर चल रही है, है ना? परंतु अभी उसको हम मिथ्यात्व का क्षोभक्षम नहीं कह सकते, ये बात मुझे बताएं। क्षोभक्षम लब्धि में मिथ्यात्व का भी अनुभव घट रहा है, परंतु उसको हम मिथ्यात्व का क्षोभक्षम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्षोभक्षम किसमें होता है? देशघाती में, और मिथ्यात्व है सर्वघाती प्रकृति, इसलिए उसको हम मिथ्यात्व का क्षोभक्षम नहीं कहेंगे, फिर भी क्षोभक्षम लब्धि कहेंगे। ये लब्धि और क्षोभक्षम में जो अंतर है उसकी बात में करेंगे, इसको कल्प की रिपीट करेंगे हम, क्षोभक्षम और क्षोभक्षम लब्धि की बात। क्या होता है, काल ये समय पूरा होने आता है तो इतना भर जाता है ना, क्योंकि और अंदर कुछ घुसने के लिए जगह नहीं होती। और दूसरी भी बात है, कल और गहरा विषय आता है तो पहले दिन का आसान लगने लगता है। कर्णानियम में तो यही होता है कि अगले अगले दिन में ऐसे कुछ गणित वगैरह आते हैं कि कुछ समझते ही नहीं, तो ऐसा लगता है कल का अच्छा था, आज का बहुत भारी हो गया। तो ये जो अनुभाग घटने का कार्य है वो सभी अप्रशस्त कर्मों में होता है। अब क्षोभक्षम में तो होगी समय, ये हम इसको कल ही ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पूरा एक क्षोभक्षम और क्षोभक्षम लब्धि का अंतर है, इसको हम दोबारा फिर देखेंगे कल। बोलो मल्लिनाथ भगवान की।